नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने समाचार चैनल एनडीटीवी खरीदने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड को खरीदना व्यवसाय से अधिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रणय रॉय इसके चेयरमैन बने रहें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। गौतम अडानी ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वह अपने गृह राज्य गुजरात में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में $4 बिलियन से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी की हवाई अड्डे के यात्रियों को अडानी समूह की अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए उनकी अगले 3 से 6 महीनों में एक सुपर ऐप लॉन्च करने की भी योजना है। क्रिएनोवेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड CTPL ने उद्यम पूंजी कंपनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स IPV और अन्य से $20 लाख जुटाए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। CTPL विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों और मंचों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। गुरुग्राम की स्टार्टअप ने बयान में कहा कि उसने IPV और रिकोर क्लब से $20 लाख मिले हैं। CTPL के संस्थापक विकास साहू ने कहा कि हमारा इरादा नए पूंजी के साथ देश भर में ज्यादा से ज्यादा परिसरों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद बिक्री को भेदिया कारोबार संबंधी नियमों के दायरे में लाने के लिए नियमों में बदलाव किया। इस समय भेदिया कारोबार संबंधी नियम सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों के मामले में लागू होते हैं। इसके अलावा सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित कंपनियों पर भी ये नियम लागू होते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड इकाइयों को प्रतिभूतियों की परिभाषा से बाहर रखा गया था। सेबी का ताज़ा फैसला फ्रैंकलिन टेम्पल्टन प्रकरण के बाद आया है, जिसमें फंड हाउस के कुछ अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने 6 ऋण योजनाओं पर रोक लगाए जाने से पहले उन योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को भुनाया था। सेबी ने बृहस्पतिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा, कोई भी अंदरूनी सूत्र किसी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी से परिचित होने की स्थिति में म्यूचुअल फंड की ऐसी किसी योजना की इकाइयों में लेनदेन नहीं करेगा जिसके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य उस पर जानकारी के कारण प्रभाव पड़ सकता है। नए नियमों के तहत परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को अपनी म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में AMC ट्रस्टियों और उनके करीबी रिश्तेदारों की हिस्सेदारी को खुलासा करना होगा। इसके अलावा AMC का अनुपालन अधिकारी समापन अवधि निर्धारित करेगा जिस दौरान नामित व्यक्ति म्यूचुअल फंड की इकाइयों में लेनदेन नहीं कर सकता। इसे प्रभावी बनाने के लिए सेबी ने भेदिया कारोबार के नियमों में संशोधन किया है जो 24 नवंबर से प्रभावी है। टोयोटा किलोस्कर मोटर समग्र कार्बन उत्सर्जन में कटौती के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं भविष्य में उसकी देश में इलेक्ट्रिक वाहन EV लाने की भी योजना है। कंपनी के वाइस चेयरमैन विक्रम किलोस्कर ने कहा, कंपनी ने अपने लोकप्रिय बहुउद्देशीय वाहन इनोवा का नया हाइब्रिड संस्करण इनोवा हाईक्रॉस शुक्रवार को बाजार में उतारा है। विक्रम किलोस्कर से सवाल किया गया कि ऐसे समय में जब भारत में इलेक्ट्रिक वाहन EVs पैर जमा रहे हैं, तब टोयोटा किलोस्कर मोटर की हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति क्यों है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि देश का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। आपको इसे समग्र रूप से और वैज्ञानिक आधार पर देखना होगा और हम यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मौजूद निम्न स्तर को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि बिजली से चलने वाले वाहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। किलोस्कर ने कहा, भारत में नवीकरणीय बिजली 50-60% से अधिक होने लगेगी तो निश्चित रूप से सब बिजली आधारित होगा। हम भी इलेक्ट्रिक वाहन ला सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में कुल जीवाश्म ईंधन 57.9% और गैर जीवाश्म ईंधन 42.1% है। दूरसंचार कंपनी जियो ने गुजरात के सभी 33 जिलों मुख्यालयों में प्रायोगिक चरण के तहत 5G सेवाएं शुरू की हैं। कंपनी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां सभी जिलों मुख्यालयों में 5G सेवा शुरू हो चुकी है। कंपनी ने एक बयान में कहा, आज जियो ने गुजरात के सभी 33 जिला मुख्यालयों में ट्रू 5G सेवा शुरू कर दी, जिसके साथ ही गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां के 100% जिला मुख्यालयों में जियो का ट्रू 5G कवरेज है। गुजरात महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि ये रिलायंस की जन्मभूमि है। जियो अपने उपभोक्ताओं को 5G सेवा देने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले रही। राज्य में इस सेवा की शुरुआत कंपनी की ट्रू 5G पहल से हुई है, जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। इस पहल के तहत रिलायंस फाउंडेशन और जियो मिलकर गुजरात के 100 स्कूलों का डिजिटलीकरण करेंगे। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश M. अंबानी ने एक बयान में कहा, हमें ये बताते हुए गर्व है कि गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां के 100% जिला मुख्यालय हमारे ट्रू 5G नेटवर्क से जुड़े हैं। हम इस प्रौद्योगिकी की वास्तविक ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह अरबों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, 5G भारत के प्रत्येक नागरिक, हर घर और हर कारोबार तक पहुंचना चाहिए, तभी हम उत्पादन, आय और जीवन यापन के मानक में वृद्धि कर सकेंगे और देश में समृद्ध और समावेशी समाज बना पाएंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।